تفسير سورة القارعة مکی سورت ہے، اس کی 11 آیات، 1 رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 35 ہے، حروف 160 ہیں. پہلے ہی لفظ القارعتو کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، جو صرف اس کا علامتی نام نہیں ہے بلکہ اس سورت کا جو ہے وہ مضمون بھی ہے. اس سورت کا نام بھی ہے اور اس سورت کا مضمون بھی ہے، کیونکہ پوری سورت میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا موضوع اور مضمون قیامت اور آخرت ہے. قیامت اور آخرت میں کیا فرق ہے؟ قیامت کہتے ہیں اس دور کو اور اس عظیم واقعے کو جب موجودہ نظام درم برم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کانپنے لگے گی اور سورج، چاند، ستارے سارے ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے. پوری کائنات جو ہے اس میں ایک ٹوٹ پھوٹ واقعہ ہو جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تو یہ ہے قیامت. اور آخرت کیا ہے؟ جب یہ عظیم حادثہ واقعہ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو جزا اور سزا دی جائے گی وہ ہے آخرت، ہمیشہ کی زندگی. کچھ لوگوں کی اچھی ہوگی اور کچھ کی بری ہوگی. سورۃ القاریہ چھوٹی سی مختصر سی سورت اور بڑے زبردست انداز میں اس میں جو ہے اہم حقیقت ہم سب کے سامنے رکھی گئی. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ القارعت ما القارعت وما ادراک ما القارعہ. القارعت وہ کھڑکھڑا دینے والی، ما القارعت کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک اور کیا جانو تم، اور کیا خبر تمہیں، مل قاریعتو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ عظیم حادثہ. اب آپ دیکھیے کہ القاریعتو یہ قیامت کا نام ہے، اور اللہ تعالی نے قیامت کے کئی نام جو ہیں وہ گنوائے ہیں، کبھی الحاقہ، کبھی الغاشیہ، کبھی الواقعہ. پیچھے آپ نے جو ہے وہ زلزال جو ہے وہ پڑھا، ہاں، تو یوم التغابن وہ بھی اس کا نام ہے. تو یہ مختلف نام جو ہیں اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، اور یہاں پہ کیا کہا، القاریات. اس کا روٹ ہے قاف را عین، معنی ہے ٹھونکنے والی. کرن کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنا کہ جس سے سخت آواز نکلے. اور عرب لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جیسے فلاں قبیلے یا فلاں قوم پر سخت مصیبت آ گئی تو اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کرل باب. اب دروازے کو کوئی جو آ کے مارتا ہے زور زور سے تو کیا ہے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ایسے کھٹکھٹانا کہ زور کی سخت آواز آئے، عام آواز نہیں. بعض اوقات رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا دن کے وقت گھر کے اندر ایک شور ہنگامہ ہوتا ہے اور باہر کی آواز سنائی نہیں دیتی تو کھٹکھٹانے والا زور زور سے کھٹکھٹاتا ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، وہ جو غافل ہیں، جو دنیا کی زندگی میں مست، اپنی لہو و لعب میں مصروف، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات اور دنیا کے متوالے، دنیا سے عشق اور پیار کرنے والے، جنہوں نے قیامت کے بارے میں سوچا ہی نہیں. سوچا تو صحیح لیکن پھر اس کی تیاری ہی نہیں گئی، کبھی یہ بات سوچی نہیں کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، और फिर मुझे अल्लाह के पास जाना है, फिर जजा और सजा होगी, तो मैं कुछ कुछ तो उसकी तैयारी कर लूं। कहा, ऐ मसरूफ रहने वालों, ऐ सुनी अनसुनी कर देने वालों, ऐ दुनिया से मोहब्बत करने वालों, ऐ नींद के मतवालों, ऐ दुनिया की मालो दौलत और दुनिया की जिंदगी पर नकद दिल हार देने वालों, अलकारियातु मलकारियातु वमा अदरा कमल कौरिया, खड़खड़ा देने वाली। क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, और तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। कुरान का ये अंदाज बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही सख्त है। एक ही बात को 3 आयात में बयान किया गया। ये वही अंदाज है जो पीछे आप सूरत अल हाका में भी पढ़ चुके हैं, अल्हाका मलहा वमा अदरा कमलहा। तो किसी चीज की शिद्दत को बताने के लिए, उसकी सख्ती को बताने के लिए, और उसकी जो है, जैसे कोई वाकया बहुत संगीन हो तो उसका अलार्म देने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया जाता है कि वो है खड़खड़ा देने वाली। वो बड़ा अजीम वाकया होगा, वो बड़ी सख्त आफत होगी, वो बड़ी हलचल मचा देने वाली आफत होगी, वो ठोकने वाली है, वो बजाने वाली है, वो खटखटा देने वाली है। और फिर मलकारिया, और तुम क्या जानो कि वो अलकारिया क्या है। वमा अदरा का, और क्या जानो तुम, और आप यूं भी कह सकते हैं और नहीं जानते तुम। माँ जो है इस्तफामिया भी हो सकता है, और ज्यादातर लोगों ने इस्तफामिया इसका तर्जुमा किया है। वैसे आप देखें कि माँ के मानी नहीं के भी होते हैं ना, कि तुम तो जानते ही नहीं हो। और फिर ये कि जब इस्तफामिया होता है तो सोचने समझने पर आमादा किया जाता है, और क्या जानो तुम कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। अदरा का दाल रा या इसका रूट है, या आपको नजर नहीं आ रहा, हरफे इल्लत है, गिर चुका है। इसके मानी है बिलवास्ता किसी चीज का इल्म हासिल होना। इस पर हमेशा ला मा अन नाफिया या इस्तफामिया दाखिल होता है। आप देखिए सूरत अल कद्र, वहां भी आपने पढ़ा, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, है ना। तो वहां पे भी अदराका से पहले जो है वो मा आया है, और यहाँ पे भी जो है वो मा आया है। और इंसान कयामत से ऐसे गाफिल है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क्या जानो कि वो क्या है। और दुनिया में भी हम सबका हाल क्या है, चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मिजार में, चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मिजार में, तुम क्यों सताने आ गए किसने पता बता दिया, तुम क्यों सताने आ गए किसने पता बता दिया। फिर उस दिन की शिद्दत, संगीनी और उस दिन की सख्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं बयान करते हैं, यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस। यौमा उस दिन, यकूनु नासु हो जाएंगे इंसान। अब आप देखें कि यहां पर जो है यकूनु जो है ये वाहिद इस्तेमाल किया गया है, यकूनूना होना चाहिए था जमा के लिए ना, लेकिन यकूनु काना यकूनु इसका रूट है काफ वो नून, और इसके मानी था के भी होते हैं, और यहाँ पे जब फेल मजारे हैं तो हाल और मुस्तकबिल दो जमाने इसके अंदर पाए जाते हैं। असल में आगे अन्नास आया है। अन्नास जो है देखने में वाहिद लगता है, लेकिन मानी के लिहाज से जमा के मानी देता है सारी इंसानियत। ये इस जिन्स यहां पर इस्तेमाल हुआ है। हो जाएंगे उस दिन इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दौर के जो लोग होंगे, और बादशाह भी और गुलाम भी, उसके दरबारी भी, मालिक भी नौकर भी, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, छोटे बड़े, मर्द औरतें सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? अल्लाह ताला कहते हैं कल फराश। और काफ के मानी होते हैं मानिद के, फराश। फराश का लफ्ज जो है इसका रूट है फाराशीन, फराश फाराशीन। अब आप देखें कि आपने फर्श तो पढ़ा ही है ना, और ये फर्श किसे कहते हैं? जो नीचे होती है चीज, जो पस्ती पर होती है, तो उसके लिए जो है वो फाराशीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर जो है ये लफ्ज पतंगों के लिए कैसे आया? असल वजह यह है कि जिस तरह कपड़े को बिछाने के लिए भी फर्श कहा जाता है, इसी तरह जो है वो जमीन जो बिछी हुई है उसको भी फर्श कहा जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से एक और जो है इसके मानी बयान किए जाते हैं, और वो क्या है? जैसे ये तितलियां नहीं होती, तितलियां पतंगे, उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और पतंगे आमतौर पर जो हैं वो क्या होते हैं? ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, और जब वो ऊपर उड़ते हैं और उनके पर फैले हुए होते हैं तो ऐसे जैसे वो बिछे हुए हैं, जैसे बिछे हुए, जैसे फर्श नहीं बिछा हुआ, उससे उनको निस्बत दी जाती है। परवाना तितली वगैरह की जमा अल्फराश आती है। और यहां पे भी फिर क्या कहा गया? कल फराशी, गोया के वो बिछे हुए हैं, गोया के वो पतंगे हैं। कैसे? अल मबसूस, अल मबसूस। मबसूस जो है इसका रूट है बासासा, आप इसको पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी होते हैं फैला हुआ होना। ये लफ्ज पहले भी आपने पढ़ा है। और मसलन देखें कुरान में फैलने के लिए, फैलाने के लिए 6 लफ्ज आए हैं, जरा मद्दा दहा तोहा नशरा बसा, आखिरी दर्जा बसा का है। बासासा परागंदा करना, बखेर देना। और बसा यूं इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज है ना उसके अज्जा, उसके टुकड़े बिखरे हुए हों, छोटे छोटे होकर, जैसे गर्दो गुबार, जैसे शमा के परवाने। और जो इंतहाई गम की कैफियत होती है उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई बहुत गमजदा होता है। क्योंकि ये लफ्ज जो है ये हिस्सी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और मादी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे फराश जो है वो बिखरे हुए होंगे, पतंगे आंखों से नजर आते हैं ना, और रंग बिरंग की ये तितलियां पतंगे जो उड़ते रहते हैं, लेकिन कयामत की सख्ती कितनी शदीद होगी, कितनी हौलनाक होगी, कि ये जो है इनके अंदर टूट फूट वाकया हो जाएगी और ये बिल्कुल जो है वो बिखरे हुए होंगे। क्योंकि आप देखें कि जब कोई शख्स जो है वो बहुत ज्यादा गम की कैफियत में होता है तो उसका हाल क्या होता है कि गम की कैफियत उसके दिल पर ऐसे छा जाती है कि हर तरफ जो है वो उसके दिल पर छा जाती है। तो उसके लिए भी आता है ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी है ना, और जिसमें हमें फिर ये लफ्ज मिलता है इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी। और बस्सा कहते हैं शिद्दतुल हुज़्न को, फिर कि वो गम जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाए। तो उन्होंने ये दुआ जो थी वो मांगी थी कि मैं अपने गम का इजहार और अपने दुख का इजहार, अपने हुज्न का इजहार जो है वो अल्लाह से करता हूं। आप देखें आमतौर पर आपने कभी बरसात के मौसम में देखा हो कि बारिश हुई, बारिश के बाद शाम हुई और शाम के वक्त आपने लाइट को कर दिया ऑन, तो कितने पतंगे होते हैं जो कि लाइट और रोशनी के गिर्द जमा हो जाते हैं, हर तरफ पतंगे ही पतंगे, कहां से आ जाते हैं भागते हुए। और शमा के गिर्द भी परवाने होते हैं, पतंगे होते हैं उस रोशनी के पास, हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। कहा कि उस दिन पतंगे नहीं होंगे, इंसान होंगे जो पतंगों की मानिंद होंगे। ये इंसान जो के सितारों पे कुमन डालता है, जो कि पहाड़ों की बुलंदी पर समझता है कि मैं पहुंच गया और पहुंच भी गया, और फिर ये क्या करता है, इतरा इतरा कर चलता है, किब्र करता है, गुनाह करता है। जब कयामत आएगी तो इंसान जो है पतंगों की तरह, परवानों की तरह बिखरे हुए होंगे। तो ये क्या है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि असल में इंसान घबराए हुए होंगे, बहुत परेशान हो हाल होंगे, और घबराहट की हालत में इस तरह भागे भागे फिरेंगे जिस तरह रोशनी पर आने वाले परवाने जो हैं वो हर तरफ मुंतशिर हो जाते हैं। فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, और हो जाएंगे पहाड़, जबल की जमा है जिबाल, पहाड़ों के कहा जाता है, कहीं कुरान इसको रासिया रवासिया के नाम से याद करता है, कहीं जबल और जिबाल के नाम से याद करता है, और ये हमारी जमीन की कीलें हैं। वतद बल जिबाल अवतादा, और ये जमीन पर ठुंके गए हैं, गाड़ दिया गया है ताकि जमीन इधर उधर ना हो। और जमीन का फिर क्या हाल होगा, आप सोचें कि जबकि पहाड़ों के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहाड़ उस दिन हो जाएंगे कैसे, कल एहनी, काफ के मानिब मानी होते हैं मानिब के तरह, जैसे कि ऊन है, ऊन के लिए सौफ का लफ्ज कुरान में आया है, स्वाद वफा, और ये कहते हैं भेड़ और बकरी वगैरह की ऊन को, लेकिन ऐन हानून जब आता है तो ऐसी ऊन को कहते हैं जो रंगी भी हो, तो हो जाएंगे रंगी भी ऊन के अल मनफूश। और मनफूश का लफ्ज जो है ये इसका रूट है नून फा शीन नफाशा, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आपने पढ़ा था, जब आपने जो है वो वाकया पढ़ा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि फिर क्या हुआ था कि बकरियां जो थी वो रात के वक्त जो थी वो खेत के अंदर जो थी वो फैल गई थी, और जो मुकदमा लेकर आए थे लोग, तो उस वक्त आपने इस लफ्ज को जो था वो पढ़ा था। तो असल में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है रात के वक्त इंसान जो काम करता है उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है रात के वक्त फैल जाने के लिए, रात के वक्त फैल जाना। तो हुआ क्या था कि जब वो लोग थोड़े से गाफिल हो गए तो बकरियां जो थी वो रात के वक्त जो थी वो खेतों के अंदर फैल गई थी। नफाशत, वहां भी आपने ये लफ्ज पढ़ा था, और अब यहां पर जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी क्या है, जैसे वहां पे आपने पढ़ा था इज नफाशत फीही गनमुल कौम, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाल भी सुनो, जब वो एक खेती का मुकदमे का फैसला करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां चर गई थी, इज नफाशत फी गनमुल कौम, तो वैसे इसके फिर मानी क्या है, नफाशा के फैल जाना, क्योंकि रात के वक्त बकरियों का बगैर चरवाहे के चरने के लिए मुंतशिर हो जाना, तो जब रात के वक्त बकरियां जो है वो बगैर चरवाहे के निकल जाएंगी मुंतशिर हो जाएंगी तो क्या करेंगी, किसी की भी खेती पर जो है वो मुंह मारेंगी, नफाशा। यहाँ पे भी फिर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि पहाड़ जो है वो हो जाएंगे दुमकी हुई रून ऊन के अल मनफूश, मनफूश का मतलब भी क्या है, फैले हुए। आपने ऊपर मबसूस पढ़ा, उसके मानी भी क्या है कि फैले हुए, तो दोनों लफ्ज जो है वो फैलने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसके मानी क्या हैं? असल में जैसे पहाड़ मुख्तलिफ रंगों के होते हैं ना, आप पढ़ चुके हैं कि बीद भी हैं और अहमर भी हैं और गराबीद भी हैं और मुख्तलिफ रंगों के। अब ये और आपको कभी जो है वो जब सफर करने का इत्तफाक हुआ हो और आप जरा कायनात का मुशाहिदा करें तो आप उसमें देखेंगी के पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, भूरा रंग है, हल्का रंग है, स्लेटी रंग है, डिफरेंट रंग। तो ये पहाड़ जब उड़ रहे होंगे रुई के गालों की तरह तो ऐसे लगेंगे कि रंग बिरंगे हैं। दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ने ये भी बयान किए हैं कि आम तौर पर मुख्तलिफ रंगों की ऊन होती है जो जानवरों के ऊपर से उतारी जाती है, तो जब वो अगर वो ऊन उड़ रही हो तो मुख्तलिफ रंग, مختلف رنگ. تو یہاں پہ اصل میں یعنی چونکہ پہاڑوں کا بھی مختلف رنگ ہوتا ہے, اونوں کا بھی مختلف رنگ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اصل میں قیامت کی تباہی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسی سخت تباہی ہوگی, ایسا زبردست ہولناک وقت ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ رنگ برنگ کے اون سے جو بنے ہوئے, جیسے ایسے ہی جیسے کہ اون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے اون کا مختلف رنگ ہوتا ہے ایسے مختلف رنگوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے. اچھا اس میں ایک تو دیکھیں آپ رنگوں پہ غور کریں کہ رنگ مختلف ہیں, دوسری جو اہم بات ہے جو بہت اہم ہے اس کے اندر وہ یہ ہے پہاڑ ہوتے ہیں بھاری جمے ہوئے ہوتے ہیں, اون ہوتی ہے ہلکی, اون ہوتی ہے ہلکی, جب اون کو دھنکا جاتا ہے تو پھیل جاتی ہے ہر طرف, بھر جاتا ہے کمرہ اس کا. آپ دیکھیں آپ نے رضائی کے اندر ڈالی اون یا کسی بھی چیز میں, تو جب اس کو مشینوں کے اندر رکھ کر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے تو بہت پھیل جاتی ہے, بہت ابر سی جاتی ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کے بعد تکیے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور رضائیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. تو اتنے بھاری پہاڑ, اتنے جمے ہوئے پہاڑ, قیامت کی ہیبت ایسی ہوگی, اللہ کا حکم ایسا ہوگا, القاریہ ایسی ہوگی کہ یہ جمے ہوئے پہاڑ جو ہیں دمکی ہوئی اون کی طرح اور رنگ برنگ کی اڑتی ہوئی اون کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف پہاڑ ہیں. اب یہ ہے قیامت کے مراحل. تو قیامت کے مراحل کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں وہ آخرت کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پھر آخرت کے مراحل جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ, بس جس کے ہوں گے اعمال نامے بھاری, بس جس کے ہوں گے پلڑے بھاری. ثقلت جو ہے سا قاف لام سے ہے اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وزنی کے لیے, بھاری کے لیے. اور آپ جو ہیں اس کو پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ انسان جو ہے دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ لے گا, اور یہ آپ نے آیت 7 اور 8 میں بھی لفظ پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو مِثْقَال وہاں بھی آپ نے پڑھا اور یہاں پہ بھی جو ہے نا یہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا انداز اور ہے, روٹ ایک ہی ہے سا قاف لام, ثقل بوجھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بس جس کے ہوں گے بوجھ, کس چیز کے بوجھ, مَوَازِينُهُ ان کے موازین کے. موازین جو ہے یہ موازین کیا ہے, اس کا کہتے ہیں کہ موازین کا واحد جو ہے وہ میزان بھی ہے اور موضوع بھی ہے, موضوع, اور ان دونوں کی جمع موازین آتی ہے اور اس کا روٹ ہے وزن وزنون اور اس کے معنی ہوتے ہیں تولنا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بس جس کے ہوں گے پلڑے بھاری, فہوا پس وہ ہوگا فی عیشت رادیہ, دل پسند زندگی میں, عیش عیش و عشرت بھی اسی سے ہے اور عیشت یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, اور ایک تو یہ ہے نا کہ انسان دنیا میں جو ہے وہ عیش و عشرت سے رہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی کے لیے لفظ آتا ہے عیشت, ان کا زندگی گزران رہن سہن اس کے لیے. تو بس وہ لوگ جو ہیں عیشتن میں ہوں گے, عیش و عشرت میں, اور وہ کیسی ہوگی رادیتن, پھر ساتھ ہی رادیتن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ زندگی ہوگی کیسی, خوش ہونے والی. رادیہ اسم فاعل ہے, ایک عیش و عشرت, اب اتنا ہی کافی تھا, مزید اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ رادیتن. اور دوسری طرف کیا ہے, ایک دوسرا انجام کیا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ, اور رہے وہ لوگ اَمَّا, تو وہ لوگ جو من جن کے جو خفت خافافا, اور یہ فعل ہے خفیہ سے ہلکا ہونا, اور جن کے ہوں گے ہلکے موازینہ, اور موازینہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ اسم آلہ ہے, پیچھے بھی آپ نے آئے 6 میں پڑھا موازینہ, تو یہ اسم آلہ ہے. تو کیا ہے کہ جس میں تولا جاتا ہے, ترازو वजन करना, तो मीजान और मौजू की ये जमा है। तो जिसके होंगे आमाल नामे हल्के, फउम्मुहु हाविया, बस उनकी माँ जो है क्या होगी, हाविया, हाविया होगी। और कहते हैं किसको, माँ को कहते हैं। माँ क्या है, माँ जो है वो जब मुश्किल तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो बच्चा भाग कर जो है वो माँ की गोद में पनाह ले लेता है। अब आप देखें कि जिनके आमाल नामे होंगे हल्के, तो वो जो है अब वो चाहेगा कोई जो है उसको जाए पनाह मिल जाए। मा लहुम मिन महीस, कोई उसके लिए जाए पनाह नहीं है। अगर कुछ जाए पनाह है, अगर उसका कुछ ठिकाना है, उसकी माँ उसकी जड़, तो वो क्या है, हाविया तुन, हाविया है। और हाविया जो है ये क्या है, हा वो या, और इसके मानी होते हैं बुलंदी से नीचे गिरना, है ना, बुलंदी से नीचे गिरना। कुरान में गिरने के लिए 19 लफ्ज आए हैं और इसका नामा दर्जा है, हा वो या। मशहूर लफ्ज है, आसमान और जमीन के दरमियानी फिजा को भी हवा कहते हैं, और जब कोई बहुत बुलंदी से कोई चीज जमीन पर गिरती है उसके लिए भी आता है, सितारे के गिरने के लिए भी आता है। सितारा कितनी बुलंदी पर होता है, वन नजमी इजा हवा। अब यहां पर क्या है कि इसके मानी है ख्वाहिशात, अहवा इसकी जमा है, हवा की जमा अहवा है। अब यहां पर जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है किसका, हाविया का, हाविया तुन, तो उसकी माँ जो है वो हाविया होगी। तो क्या है कि बुलंदी से जमीन पर गिरेंगे, और हाविया तुन गहरे कुएं को भी कहते हैं, गहरे गड़े को भी कहते हैं, खड को भी कहते हैं, गोया के जहन्नुम की गहराई, गहरी जहन्नुम का खड होगा जिसके अंदर वो गिरेंगे। और दोजख में एक गहरे खड का नाम भी हाविया है। कौन लोग उसके अंदर गिराए जाएंगे, जो के अल्लाह के नाफरमान थे और जिनके अमाल नामे हल्के रहे। और जैसे बच्चा मुसीबत के वक्त भागता है जाके माँ की गोद में सर छुपा लूं, या मुर्गी के चूजे जो होते हैं वो मुर्गी के परों के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं, बिल्ली को देखकर, किसी और परिंदे को देखकर, और मुर्गी अपने पर फैला देती है। इस तरह जो है वो जहन्नुम जो है वो अपने आप को खोलेगी, फैलाएगी, कि हलमिन मजीद, हलमिन मजीद। और गहराई का अजाब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गहरी जहन्नुम के खड में उनको गिरा दिया जाएगा। ऐसे नाफरमानों का मलजा और मावा हाविया होगा, कोई और इनका ठिकाना ना होगा। वमा अदराका माहिया, और तुम क्या जानो कि वो माहिया क्या है, मा क्या हिया। और आप देखें कि क्या है वो, क्या है वो, तुम क्या जानो कि क्या है वो, नारुन हामिया, आग है भड़कती हुई। तो मजीद उसकी जो वजाहत की गई कि महज एक गहरा गड़ा नहीं है, महज एक गहरा कुआं या खड नहीं है, बल्कि गहरा गड़ा भी है और उसके साथ जहन्नुम की आग भी है, नारुन हामिया, के जहन्नुम की आग जो है उसके अंदर दहक रही होगी, इतनी गहराई से उसके अंदर जो है वो आग दहक रही होगी। और आप देखिए कि गर्मी के लिए, आग के लिए कुरान में हमें जो लफ्ज मिलते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज है ना, 6 लफ्ज है, और उनमें से एक हमा भी है। इसका रूट हा मीम मीम भी हो सकता है, और फिर हमीम के मानी क्या होते हैं, ऐसा पानी जो कि खौलता हुआ हो, इंतहाई नुक्ता है उरूज पर, क्योंकि आप चावल भी बॉयल करना चाहती हैं तो जब पानी खूब खोलने लगता है तो तब आप चावल उसमें डालती हैं ताकि चावल उसमें पक जाए। आप पकते हुए खोलते हुए पानी में कोई चीज उसके अंदर डालती हैं। तो इसी तरह एक तो इसके ये मानी है कि खूब खोलता हुआ, और दूसरा इसका रूट हामिम या भी हो सकता है, और इसके मानी भी यही है कि खूब गर्म होना, जैसे हम्मत तनूर, हम्मन नार, हम्मल मा, गरम पानी, इंतहाई गरम पानी। गरम पानी के चश्मे को भी कहते हैं हुम्मा, बुखार को भी कहते हैं कोयला, राख, आग में जली हुई हर चीज, और वो इंसान भी होंगे। हमाम का लफ्ज आपने सुना होगा, उससे आप याद रख ले, हमाम में गए थे तो गर्म पानी से गुसल करने की जगह। वला यसलु हमीमुन हमीमा लहुम शराबुन मिन हमीमिं वा अजाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफुरून। और वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। तो ये तो हमने देखा कि आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक जो है कि दो तरह का किरदार था, दो तरह का अंजाम है, और एक जजा है और वो है ईशत रादिया जिनके अमाल नामे हैं बाहरी, और एक सजा है जिनके अमाल नामे हैं हल्के खफत मवाजीन हो, और वो है हाविया और वो है नारुन हामिया। अब हम ये देखते हैं कि इसी बात को अहदीस में कैसे बयान किया गया है, इसकी वजह जो है हमें अहदीस से कैसे होती है। आप ये बात याद रखें कि अहदीस हमारी रहनुमाई करती हैं कि इंसान के जो अमाल नामे हैं वो तोले जाएंगे, और सिर्फ इंसान के अमाल नामे ही नहीं, खुद इंसान भी तोला जाएगा। इंसान जो दुनिया में अमल करता है वो भी तोले जाएंगे, और उसके साथ खुद इंसान को भी जो है वो तराजू के अंदर रख दिया जाएगा। एक जैसे अल्लाह का नाफरमान है, खूब मोटा ताजा है, बहुत बड़ा जिस्म वाला है, और लेकिन ये कि जब उसको पलड़े के अंदर रखा जाएगा तो उसका वजन हल्का निकलेगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो वाली वो वाक्य आपको याद होगा कि उनकी टांगे बहुत पतली पतली थी, बहुत जो है वो कमजोर जुस्से के थे, लेकिन ये कि नेकियों के लिहाज से बहुत ऊंचे दर्जे पर थे, और बड़ा ईमान मजबूत था उनका। और उनकी तिलावत किसकी तिलावत से मिलती थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तिलावत से। इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी वो तिलावत करते थे। तो एक बात, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा था कि अगर अब्दुल्ला बिन मसूद जो है उसको एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ रख दिया जाए तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो है जिसमें उनको रखा जाएगा वो पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। इतने कमजोर जिस्म वाले, लेकिन जो है वो असल में इंसान का अपना वजन नहीं होगा, इंसान के अमाल का वजन किया जाएगा। एक तरफ ईमान रखा जाएगा और सारी जिंदगी की नेकियां, और दूसरी तरफ कुफर रखा जाएगा और सारी जिंदगी की बद अमालियां, और उनका वजन जो है वो किया जाएगा। तो गुनाहों का पल्ला जो है वो हल्का रहेगा, गुनाहों का पल्ला हल्का रहेगा, और नेकियों का जो तराजू और मिजान होगा वो भारी हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि जिसकी नेकियां गालिब होंगी वो जन्नत में दाखिल होगा, अगरचे बुराइयों के मुकाबले में एक ही नेकी ज्यादा हो, और जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो दोजख में जाएगा अगरचे एक ही गुनाह ज्यादा निकलेगा। सूरत अल आराफ में भी आप पढ़ चुकी, तमन सकुलत मवाजीनहु फाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो यहां पर यही बात जो है वो कही जा रही है। फिर आप जो है एक बात और आप इसको याद रखें कि आपको एक दफा मैंने एक हदीस सुनाई थी कि जब वहां पे आपा दापी का वक्त होगा तो एक जो है एक शख्स जो है अब उसकी नेकियां खत्म हो चुकी हैं और बुराइयां भी खत्म हो चुकी हैं, दोनों को तराजू उनका हो रहा है, और अब जो है ना जैसे अब बराबर बराबर है, हत्ता के एक पुर्जा लाया जाएगा कागज का टुकड़ा, और वो कागज का टुकड़ा जो है जब वो नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा तो उसका वो पलड़ा भारी हो जाएगा। कैसे? उस पे लिखा होगा कलमाए तौहीद, क्योंकि तौहीद जो है इखलास है ना। तौहीद क्या है? एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, वैसे इबादत करनी है एक अल्लाह की जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी की, और वो उसके नामाए अमाल को भारी कर देगा। ये जो सूरत है फिर इससे हमें क्या बात पता चलती है? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे। तो इससे मुराद ये है कि जो लोग दुनिया में तौहीद पर चलते रहे, रसूल की अतात करते रहे और नेकियां करते रहे, और नेकियों में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी मौके को मैं जाया कर दूं, कि इतनी नेकियां मैंने कर ली हैं। कुछ नहीं पता कि हमारी उन नेकियों का क्या हाल है। पीछे ही आपने पढ़ा है सूरत जिलजाल में कि मिसकाल जर्रतिन, मिसकाल जर्रतिन। और जर्रा किसे कहते हैं? कभी आप जो सूरज की रोशनी घर के अंदर आती है दरवाजे की सुराख में से, दर्ज में से, और वो बारीक बारीक से जो जर्रे होते हैं ना, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना बारीक से भी अगर नेकी है ना, आप कुछ नहीं, हम स्माइल दे दें, हम अपने गिलास का पानी अपनी बहन के गिलास में डाल दें, हम कुर्सी ही उसको आगे बढ़ा दें, उसको क्लास में आते हुए देखा है बस अपने कंधे को हिला दिया है, तो कंधे का हिलाना इस बात की अलामत है कि मैं अपनी इस बहन से मोहब्बत करती हूँ। बड़ी जगह है आपके लिए, बाजू का जगह नहीं भी होती, लेकिन दिलों में जगह, दिलों में जगह है। कैसे पता चलता है? कंधे को जुम्बिश दी है। कुछ भी नहीं करते, एक जुमला बोले जो रो रहा है और उसे कहें कि आपको क्या हो गया, मैं उदास हो गई आपके आंसू देखकर, क्यों आप रो पड़ी? और कोई खुश है तो एक जुमला बोले कि आज आपको खुश देखकर मैं बड़ी खुश हूं, लगता है कोई बहुत ही अच्छा खुशी का मौका है, आपको देखकर तबीयत बहुत खुश हो रही है, उसकी खुशियों में शिरकत करना जरा बराबर नेकी। बाज औकात हम बहुत बड़े बड़े तोहफे लेकर जाते हैं, मेरे पास तोहफों की अभी हैसियत नहीं है, वक्त नहीं है, कुछ भी वजह है, क्या मैं जुमला भी नहीं बोल सकती? क्या मैं फोन भी नहीं कर सकती? क्या मैं जो लोग गमजदा है क्या उनको भी कोई एक जुमला नहीं बोल सकती कि मुस्कुराहटें हैं और खुशियां हैं जर्रा बराबर नेकी। उस दिन इंसान जो है वो देखेगा, वो सोचेगा कि को, और कहते हैं कि इंसान के औकात जो है ना, तीन हिस्सों में तकसीम उस दिन कर दिए जाएंगे, अमाल भी तीन हिस्सों में तकसीम किए जाएंगे। एक तो है अच्छे अमल, एक है बुरे अमल, और एक वो वक्त होगा जो इंसान ने जाया किया होगा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और वो लम्हात ना उसके सामने एक फिल्म की तरह ना फिल्माए जाएंगे, और इंसान इतनी हसरत करेगा कि काश कि मैंने इन लम्हात के अंदर कुछ किया होता। कुछ ऐसे लम्हात और औकात होते हैं, ऐसे जिंदगी के साल जिसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठ कर उनको जाया कर दिया, तो ये भी असल में गुनाहों के पलड़े में फिर हिस्सा डाल दिया जाएगा। हम कहते हैं ना, हमने ना अच्छा किया ना बुरा, ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो एक ही ठीक है चीज जो अच्छी है, जो बुरी करते हैं वो भी बुरी, जो खाली छोड़ देते हैं ना वो भी बुरी। आप इसको इस मिसाल से याद रखें, आप पेपर हल करती हैं, कुछ के सवाल आपको आते थे आपने ठीक लिख दिए, कुछ के जवाब आपने लिखे वो गलत थे, कुछ आप खाली छोड़ देती हैं, जो खाली छोड़ती हैं उसके क्या कोई नंबर मिलते हैं? खाली जो छोड़ देते हैं वो भी गलत के अंदर काउंट किया जाता है, जीरो, नथिंग, फेल, कुछ भी तो नहीं है। तो वो जवानियां जो जाया कर दी, वो बुढ़ापे जिनमें इस्तग़फार ना किया, जब तक जवान थे बुढ़ापे का इंतजार करते रहे, जब बुढ़ापे पर आए तो फिर भी रंगरलियां ही मनाते रहे, 50, 40, 60 साल की उम्र में जो है रिटायरमेंट ले ली और बाकी जिंदगी ताश खेलने में, शराब पीने में, गपशप लगाने में, घूमने फिरने में, दुनिया बनाने में हमने गुजार दी। तो ये सारे लोगों का अंजाम बताया जा रहा है, और जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जिनके अमाल नामे हल्के होंगे, उनका जो अमाल का वजन हल्का होगा, उनका जो अंजाम है बड़ा ही दर्दनाक है। फउम्मुहु हाविया, जब भी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम किसकी तरफ देखते हैं? हम अपनी माँ की तरफ देखते हैं, बड़ी माँ याद आती है, और क्या कहते हैं, कभी कहते हैं हाय माँ, कभी कहते हैं हाय अम्मी, और फिर जब तकलीफ होती है दिल भर जाता है, कभी इर्द गिर्द जमाना, हालात, गम, खुशियां जो भी, तो फौरन चाहते हैं कि अम्मी के गले लग जाएं, बिलख बिलख कर रोएं, उसको बात करें, उससे प्यार करें, उससे कोई मशवरा ले लें। अब आप देखें जहन्नमी जहन्नुम में है, और उनका ठिकाना क्या है? फउम्मुहु हाविया, हाविया भी कैसी, बुलंदी से जमीन पर गिरने वाली खड, कुआं, गहराई। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस तो बहुत डराती है। बहुत छोटी उम्र में मैंने इस हदीस को याद किया, और जब भी मैं इस हदीस का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी, इतने में किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। आपने अपने सहाबा से पूछा, اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے صحابہ کا یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا آتا تھا ان کو رسول اللہ کی صحبت سے، اتنا وہ سیکھ گئے۔ اکثر مواقع پہ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایسے بہترین طالب علم کہ اپنے استاد سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ پھر کہتے تھے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 70 سال پہلے دوزخ کے دہانے پر اس کے منہ پر ایک پتھر رکھا گیا تھا، آج گرتے 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 وہ دوزخ کی تہ تک پہنچا ہے، اس کے اندر گیا ہے۔ آپ سوچیں، اتنی گہری ہے وہ جہنم، اتنی گہری ہے وہ ہاویہ، کہ ایک پتھر کو اس کی گہرائی میں پہنچنے میں 70 سال لگے ہیں، اور وہ ہے پتھر۔ اور اس کی جگہ جو ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ جو نافرمان اور گناہگار لوگ ہیں اور جو مسلمانوں میں سے بھی ہیں، کیسے پتا چلتا ہے مسلمانوں میں سے ہیں؟ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور منافق کون ہیں؟ جو مسلمانوں میں سے ہیں، جو کہا وہ کیا نہ، جو سنایا اس پر عمل نہ کیا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک علامہ اقبال کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مسجد کسی نے گرا دی، مسلمانوں کی مسجد تھی، اور یہ ہندو یا انگریز جو بھی تھے، کسی نے بھی جب وہ مسجد گرا دی تو مسلمانوں کی جو ایمانی جرت اور غیرت تھی، راتوں رات اس مسجد کو مسلمانوں نے بنا دیا۔ اور جب راتوں رات مسجد بنائی، اور اگلے دن اس جگہ پہ مسجد گری بھی تھی، کھڑی بھی تھی جس کو دوسروں نے گرا دیا تھا، تو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک رات میں مسجد تو بن گئی، اور مسجدیں بہت سی ہیں لیکن وہ ماتم کرتی ہیں کہ نمازی نہیں ملتے۔ قرآن بہت سے ہیں، قرآن ماتم کرتا ہے کہ قاری نہیں ملتے، عامل نہیں ملتے۔ علم بہت ہے، علم بہت ہے، لیکن علم ماتم کرتا ہے کہ اب عمل کرنے والے نہیں ملتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قاری کی تلاوت میں سوز نہیں ہے، عالم کے علم میں جو ہے وہ سوز نہیں ہے، اثر نہیں ہے۔ اور کسی کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، جواب پائے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ چل دیتا ہے۔ علم کسی سے وفا نہیں کرتا، جو بے وفائی اسے کرتا ہے نا، پھر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ تو کن کے پاس وہ بسیرا کر لیتا ہے، کن سے دوستی کرتا ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، پھر وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اور وہی علم یاد رہتا ہے جس میں ہم عمل کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور جس میں عمل نہیں کرتے، بس پھر وہ کتنے دن یاد کریں گے؟ وہ زبان کی نوک پر ہے، دل کے اندر گیا ہی نہیں، خون کے اندر رچا بسا ہی نہیں، ہڈیوں میں ریشوں میں گیا ہی نہیں، تو پھر وہ کہاں جائے گا نا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بے عمل لوگ، کافر، نافرمان، جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ ماہیا، کیا ہے وہ؟ وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، ہم بھی، حامیم بھی، میم بھی، اور حامیم یا بھی۔ اور وہ 70 سال کے بعد جو پتھر گرا ہے، تو کہاں گرا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ آپ یہ سوچیں کہ صرف گہرائی نہیں ہے، پہاڑوں کی بلندی سے کوئی نیچے گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کا۔ آپ نے سنا ہوگا، کئی ایسے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے، کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں، سوات میں، پہاڑی علاقوں میں۔ مجھے بھی کشمیر کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا، بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا، سوات جانے کا اتفاق ہوا، اور ایسے ایسے خطرناک وہ راستے تھے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے، کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نیچے دیکھتی تھی کھڈوں کے اندر، और फिर मैं उस जगह जहां मेरी गाड़ी चलती थी, और उसके बाद खौफ से मैं आंखें बंद कर लेती थी। और कई ऐसे मनाजे भी देखे कि गाड़ियां नीचे गिरी हुई हैं, और जो है वो फिर कोई उन तक पहुंच भी नहीं सका कि वो किस खड्ड में है और किस खाई में है। और ऐसे कई है, आपने भी खबरों में, अखबारात में, टीवी में ऐसे वाकयात जो है वो सुने होंगे। और जब भी फितरत का मुजाहिरा करें, बाहर निकलें, सैर करें, जरूर सोचा करें कुरान की आयात पर। और फिर मैं उस वक्त सोचती थी इस बात पे कि जहन्नुम की खाई, गहरी खाई भी कैसी होगी ना, कैसी होगी। तो यहाँ पे है नारुन हामिया, कि वो जो है वो भड़कती हुई जो है वो आग होगी, इंतहाई गर्म आग। और ये जो आयत नंबर 10 है, इसके अंदर असल में पूरा था माहिया। और फिर आप देखें कि इसमें से हाय सकता जो है इसके साथ फिर मिला दी गई है। ये हा कहां से आया? आपको मीम के बाद अलिफ, ये तो जो है वो जैसे रूट इसका मीम हा, जैसे असल में तो हा वो अलिफ ही है ना। तो पीछे आपने जैसे हाविया पढ़ा, तो इसका है क्या? हा वो अलिफ है ना, जिस पर आप सुकून दे दे, हवा। अब यहां पर जो है माहिया, ये वो नहीं है, कहीं आप उसके साथ जो है इसको मिला लें। तो माँ अलग है और असल में ये हिया था, फिर हा कहां से आ गया जो आखिर में हा है। बस ये ऐसे ही जैसे एक रदीफ काफिया मिलाने के लिए हाय सकता इसके साथ मिला दी गई है, क्योंकि हमा यहमी आया है, ये इसम फाइल का सीगा, तो सारों का वजन फिर आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि ऊपर अलकारिया से लेकर आखिर तक। तो ये क्या, ये कलाम का एक हुसन है। बात अब क्लियर हो गई। तो इससे फिर ये बात पता चलती है कि अल्फाज भी ऐसे कि दिल पर असर करें और मानी भी ऐसे कि दिल पर असर करें, लेकिन एक ही बात है कि कयामत की मंजर कशी और आखिरत का हाल, और मुझे और आपसे सवाल कि मैं और आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। तो आइए अपने दिलों के अंदर एक हलचल पैदा करें, अपनी जिंदगी में कयामत से पहले एक कयामत पैदा करें। और वो कैसे होगी? के हांके पुकारे, हर चीज से बेनियाज होकर मैं और आप अल्लाह के पास जाने की तैयारी करें। यही सोचें कि क्या मेरे पास आमाल की पूंजी है जो मैं अल्लाह के पास लेकर जाऊंगी, और जिससे मेरी बख्शिश हो जाए, और जिससे मेरी मगफिरत हो जाए, और जिससे जो है मैं जहन्नुम की दहकती हुई आग से और उसके गड़े से मैं बच जाऊं। तो भागना पड़ेगा। आप देख लें कि क्लास के आखिरी दिन है और भाग रहे हैं ना। और मैं कल भी बैठी ये सोच रही थी कि इतनी प्लानिंग से, इतने अच्छे तरीके से कोशिश की, आपने भी चलने की, हमने भी चलने की, सब कुछ करके, लेकिन बात क्लास के आखिरी दिनों की हो, बात किसी शादी की हो, बात एयरपोर्ट पर चलकर फ्लाइट पकड़ने की हो, बात मेहमानों के आने की हो, बात कहीं खुद मेहमान बनकर जाने की हो, तो ऐसी एक हलचल होती है, एक अजीब किस्म की आंधी और तूफान का सा समा होता है। और कभी आवाज बैठ जाती है, और कभी जो है वो आंखें जो है वो सूजने लगती हैं, कभी दिल उदास होता है, कभी दिल परेशान होता है। इंसान मुख्तलिफ कैफियात में से गुजरता है। तो ये तो छोटे छोटे वाकयात हैं जो दुनिया में पेश आते हैं। तो जो बड़ी कयामत आएगी, अलकारिया आएगी, तो फिर मेरे और आप पर क्या गुजरेगी जिससे गाफिल हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतुबु इलैक।